Hare Krishna. श्रीमद् भागवत क्लास में आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और उनका भी जो नहीं आ पाए लेकिन सुन रहे हैं, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में हम लोग जो है सातवें स्कंद पर हैं और इसका दूसरा अध्याय चल रहा है और इस अध्याय का नाम है असुर राज हिरण्यकश्यपु और श्लोक संख्या है 47। ठीक है, तो आप हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। यावलिंगान्वितो हत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्यया क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। यावलिंगान्वितो आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्यया क्लेशो माया योग अनुवर्तते। यावलिंगान्वितो आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्यया क्लेशो माया योग अनुवर्तते। हमारे पीछे बोलिए, यावत् जब तक लिंगान्विता सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत आवृत ही निसंदेह आत्मा आत्मा तावत् तब तक कर्म सकाम कर्मों का निबंधनम बंधन ततः उससे विपर्यया उल्टा धोखे से शरीर को आत्मा मानते हुए क्लेश कष्ट माया योगा बहिरंगा भ्रामक शक्ति के साथ प्रबल संबंध अनुवर्तते पीछा करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है, अतएव उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं विपर्ययों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य, जीव सूक्ष्म शरीर द्वारा बंधा हुआ है जिसमें मन बुद्धि तथा मिथ्याहंकार सम्मिलित है। अतएव मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगले शरीर का कारण बनती है। जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में पुष्टि की गई है, यम यम वापिस मृण भाव त्वजति अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मन उस मानदंड को निर्धारित कर देता है जिससे आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में ले जाया जाता है। यदि जीव मन की आज्ञा का विरोध करता है तो मन को भगवान की प्रेम भक्ति में लगाता है और मन उसे नीचे नहीं गिरा सकता। अतः सारे मनुष्यों का कर्तव्य है कि मन को सदैव भगवान के चरण कमलों में संलग्न रखे। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो। जब मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है तो बुद्धि विमल हो जाती है और उसे परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त होती है। ददामि बुद्धि योगम तम। इस तरह जीव भव बंधन से मुक्ति की दिशा में प्रगति करता है। जीवात्मा सकाम कर्म के नियमों के अधीन रहता है किंतु परमात्मा इसके अधीन नहीं होता। जैसा कि वैदिक उपनिषद में पुष्टि हुई है, परमात्मा तथा जीवात्मा एक शरीर में बैठे हुए दो पक्षियों की तरह हैं। जीवात्मा शारीरिक कर्मों के फल खाकर सुख या दुख भोगता है लेकिन परमात्मा ऐसे बंधन से मुक्त होने के कारण साक्षी बना रहता है। और जीवात्मा की इच्छा अनुसार उसे कर्मों की अनुमति देता रहता है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यावन लिंगन वितो आत्मा तावत कर्म निबंधनम ततो विपर्या क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फलों से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है, अतः उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं विपर्ययों को भोगना पड़ता है। तो ये प्रसंग जो चल रहा है, असुरराज हिरण्यकश्यपु जो हैं ये सब बातें बोल रहे हैं। हम लोगों ने सुना होगा हिरण्यकश्यपु के बारे में कि वो बहुत बड़े असुर थे, असुरराज थे, और प्रहलाद महाराज जो हैं उनके पुत्र थे, और किस प्रकार उन्होंने अपने बेटे के ऊपर अत्याचार किया ताकि वो भगवान की भक्ति ना करे, और किसकी भक्ति करे, हिरण्यकश्यपु की भक्ति करे। लेकिन ये जो वृतांत है ये उससे पहले का है, जब हिरण्यकश्यपु के जो बड़े भाई हैं हिरण्याक्ष, उनको जो है भगवान ने वराह रूप लेकर जो है उनका वध किया, और उनके कुछ बेटे हैं और उनकी वाइफ और उनकी खुद की माता दीति, अब सब शोकाकुल हैं। जैसे कि नेचुरली बता रहे हैं कि जब भी किसी के परिवार से किसी का जाना होता है तो उस समय परिवार की स्थिति बहुत दयनीय होती है, बहुत शोकाकुल होते हैं, सब लोग बहुत डिप्रेस होते हैं। तो वही स्थिति इस परिवार की भी है। तो जो हिरण्यकश्यपु हैं तो अपनी माता को, अपनी भाभी को, और अपने जो भतीजे, अपने भतीजे को कंसोल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा का भेद बता रहे हैं। तो शरीर और आत्मा का भेद, वास्तव में ये ज्ञान बहुत ही ऊंचा ज्ञान है, और अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञान है तो समझ लीजिए वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। जैसे कल परसों के लेक्चर में बताया था कि ज्ञान होना मतलब किसी चीज के बारे में जानना और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनाना, ये भी वैसे जमीन आसमान का अंतर है। इससे पहली बात तो कुछ ज्ञान ना होना और ज्ञान होना, इसमें अंतर है, और फिर ज्ञान होना और जीवन में उतारना, इसमें भी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इस संसार में पहली बात तो अज्ञानता में सभी लोग हैं, अंधकार में, जिन्हें कुछ भी नहीं पता शरीर और आत्मा का भेद। जैसे शरीर और आत्मा का भेद ना जानने के कारण ही इतने सारे धर्मों की रचना है, इतने सारे धर्म गुरु अपने धर्म के विषय में ज्ञान देते हैं, और पर्टिकुलर एक साधना से, एक रास्ते से अपने अनुगत लोगों को शिक्षा देते हैं, और इसी के वजह से हर व्यक्ति जिसको शिक्षा प्राप्त होती है वो उस धर्म से, उस सोसाइटी से या उस जाति से आसक्त हो जाता है पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण, और फिर पूरा जीवन ईर्ष्या और द्वेष और राग इसी के समुद्र में गोते खाता रहता है। उसको अपना तो सब कुछ अच्छा लगता है, अपना धर्म, अपने गुरु, अपना सब कुछ, लेकिन दूसरों से उसको नफरत होती है, और पूरे का पूरा संसार हम जानते हैं इसी प्रकार कुछ धर्मों में बटा हुआ है, क्योंकि जो धर्मावलंबी हैं, जो लोग उस धर्म के क्या बोलते हैं, मठाधीश हैं या धर्म के तत्ववेता हैं या नहीं, उनके गुरुजन हैं जो भी, वो लोग भी एक तो इस शरीर और आत्मा के भेद को ठीक प्रकार से नहीं जानते और ना ही उसकी शिक्षा देते हैं। और जब ये शिक्षा नीचे नहीं जाती तो लोगों के अंदर किस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारे जीवन में विकार उत्पन्न है। जब एक बच्चा ये नहीं जानता घर में, या हम लोग अगर ये नहीं जानते कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो कितने प्रकार के दुख हैं और कितने प्रकार के नुकसान है गिन नहीं सकते। अगर हम लोग जैसे कई बार किसी को सर पर चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल जाए, वैसे वो बहुत बड़ा आदमी था, अपनी एयरलाइन चल रही थी, बड़े बड़े शिप चल रहे थे और सर पर चोट लगने के कारण सब कुछ भूल गया और अब सड़क पर भीख मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे भीख? पेट भरने के लिए। किसी ने कहा खाना तब दूंगा पहले जूते साफ करो, तो जूते साफ कर रहे हैं। किसी ने कहा कि खाना तब मिलेगा जब नालियां साफ करोगे, तो खाना तब मिलता है, कर रहे हो। लेकिन है कौन वो? बहुत बड़ा मिलने रहा वो, लेकिन क्यों भूल चुका है अपने आप को? क्योंकि चोट लग गई है, अज्ञानता में है वो, और हर प्रकार का कार्य कर रहा है, दुख भी हो रहे हैं, कष्ट भी हो रहे हैं, खाना बड़े मुश्किल से प्राप्त हो रहा है, धूप गर्मी सर्दी सब झेलना पड़ रहा है उसको। और अगर उसको याददाश्त आ जाए तो क्या होगा? तो फिर जो एक्सेसिव हीट है, उस हीट से बचने के लिए वो एसी के रूम, एसी रूम में बैठेगा ना। अभी जो हाथ फैलाना पड़ रहा है, फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सब कुछ अपना भी नौकर चाकर ला कर देंगे उसको, है कि नहीं? और इस प्रकार की सारी सुविधाएं उसको प्राप्त होने लग जाएंगी, केवल क्या करने से? पुरानी चीज याद आने से कि मैं कौन हूं। तो हम लोग भी जब इस संसार में आते हैं तो जब ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा घर कहाँ है, मेरे असली पिता कौन है, वहां पर जो मेरा घर है वहां की क्या स्थिति है, किस तरह का चिन्मय जगत वो है, तो जब मैं अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाता हूं और इस भौतिक संसार में अपने आप को इस देह से, इस शरीर से ही आइडेंटिफाई करता हूं, तो हमारी स्थिति भी उस मिलियनेयर की तरह है जिसके सर पर चोट लगने के कारण वो अपना असली घर भूल चुका है, अपने असली रिश्तेदार भूल चुका है, और इस संसार में रहते हुए वो सारे दुख, सारे कष्ट, सारा संघर्ष करना पड़ रहा है केवल जीवन यापन के लिए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता नौकरी करें, नहीं लगता ना? किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कुछ बोले, डांटे, दो वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि कोई मुझे आके दुखी करे, परेशान करे, गाली दे, थप्पड़ मारे, कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता कि मुझे कष्ट आए, चाहता कोई? बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये इच्छाएं जो हैं ये वास्तव में हमारी नेचर है, हमारी आत्मा की जो नेचर है वास्तव में वो इस मटेरियल वर्ल्ड में इन सब चीजों को झेल नहीं सकता, इसलिए उसकी इच्छा है कि मैं यहां पर ये सब चीजें ना करूं। लेकिन क्योंकि अपने आप को वो शरीर मानता है, फिर मेल या फीमेल मानता है, फिर अमेरिकन या इंडियन मानता है, फिर काला या गोरा मानता है, फिर पढ़ा लिखा या अनपढ़ मानता है, फिर इंजीनियर या डॉक्टर मानता है, फिर धनी या निर्धन मानता है, कितनी प्रकार की उपाधियों से बंधने के बाद उसको याद आएगा मैं कौन हूं? बहुत समय पहले हमने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था सदमा। आप में से किसने देखी? दो तीन लोगों ने। तो थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं। एक फिल्म का हीरो होता है और नेचुरली एक हीरोइन भी होती है। तो जो हीरोइन होती है वो बहुत बड़े घर की होती है और अचानक जो है वो हीरोइन किसी एक्सीडेंट से या सर पे चोट लगने के कारण अपनी याददाश्त भूल जाती है, और है तो बहुत बड़ी लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा हो जाता है, 5-7 साल का बच्चे जैसा। और गलती से ये हीरो है, देखते इतनी बड़ी लड़की है, तो उसको अपने घर ले आता है, जब उसको घर पता नहीं होता, कुछ पता, तो अपने घर ले आता है, उसकी मदद करता है, उसको खाने को देता है, सब कुछ उसकी परवरिश करता है और बहुत अटैच हो जाता है उससे। तो एक दिन काफी लंबा समय बीतने के बाद एक बारी उस लड़की की याददाश्त वापस आ जाती है और वापस घर मालूम पड़ गया उसको घर कहाँ है, तो वो घर जाने को तैयार हो जाती है, ट्रेन में बैठी होती है, और वो जो हीरो था वो बेचारा उसको ढूंढ रहा है, कितने समय, कितने महीने, कितने साल वो उसके साथ रहा, कितने उसकी परवरिश करी, कितना उसको प्यार किया, तो वो ढूंढता है उसको, फिर पता चलता है वो तो ट्रेन से जा रही है, तो भागता है उसके पीछे और भागता है, वो उसको पहचानती नहीं कि भिखारी आ गया कैसे, मतलब खिड़की के बाहर वो खड़ा होता है, बुलाता है, नाम बुलाता है, नाम से भी नहीं पहचानती अपने आप। वो सारी हरकतें करके दिखाता है जो वो पहले करती थी, वो एक दूसरे को हंसाते थे, पागल बनकर दिखाता है, ऐसे करता है ऐसे करता है, वो कहती कौन पागल है ये, और उस व्यक्ति को सदमा लग जाता है, हीरो को सदमा लग जाता है और वो हीरो खुद पागल हो जाता है। बोलो श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की। तो ये फिल्म का नाम था सदमा। तो हम सबको सदमा लगा हुआ है और हम सब उस सदमा फिल्म के हीरो हैं। हम सब लोग भूल चुके हम कौन हैं, पागल हो गए हैं, यहां पर फालतू की एक्टिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी इतना काम कर रहे हैं, खूब इकट्ठा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ बस सही यही जीवन है। क्या है हम लोग हैं, सुनाई दिया क्या है, कितने प्यार से बोल रहे धीरे धीरे। तो हमारी स्थिति भी इस पागल की तरह है, और जब कभी इन पागलों के बीच में से किसी को याददाश्त आ जाती है, इन्हीं पागलों के परिवार में से किसी को याददाश्त आ जाती है और ये मालूम पड़ जाता है कि मेरे पिताजी कौन है, मेरा घर कहाँ है, और वो तैयारी करता वापस जाने की, तो पागल लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं पागल लोग, जोर से बोलिए हाँ जी, सबको सदमा लग जाता है, झगड़ा करते हैं, उसको पकड़ के घर बिठा देते हैं, खबरदार। सदमा क्या होता है, शॉक। तो इस प्रकार हम में से, हमारे उस परिवार में से हम सब को एक दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करते हैं, और हम में से जब कोई व्यक्ति एक जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है और वो दूसरों को भी बताने की कोशिश करता, मानता नहीं व्यक्ति, सदमा लगा रहता है। तो हमारी ये स्थिति है, और इस सदमे के कारण नुकसान देखो क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने इसी जीवन को सत्य मानने लगता है, और उसकी पूरी की पूरी जो इच्छाएं हैं, उसके जो कर्म हैं, उसकी जो एफर्ट्स हैं, उन सब कामों को करने में लगते हैं जो यूजलेस हैं। जैसे उस मिलियनेयर की बात कर रहे थे हम, जो खरबपति है लेकिन सर पर चोट लगने के कारण लोगों के घरों की सफाइयां कर रहे हैं, थोड़े से खाने के लिए दूसरा काम कर रहे हैं, ना मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये सब उसको आसानी से मिल सकता था, लेकिन क्योंकि भूल चुका है कि मैं कौन हूं, तो उसका जो एक साल, दो साल, पांच साल तक, जो जितने साल तक भी वो भूला हुआ है अपने असली पहचान को, तब तक क्या है, वो जो भी काम कर रहा है या कर रहा है वो बेकार है, यूजलेस। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा तो नहीं है, मतलब वो पागल बेचारा, जीने के लिए खाना तो चाहिए उसको। हाँ जीने के लिए खाना तो है, चाहे याददाश्त आए चाहे ना आए, खाना इतना तो जरूरी है, तो नीड्स ठीक है, लेकिन अगर फालतू के काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ये सब कर रहा है और अपने असली जीवन को नहीं जानता, तो उसके सारे काम बेकार है। जैसे एक बार हमने ये कुछ दिन पहले बताए थे कहीं पर, एक बार एक भिखारी जो है वो जो है उसको पूरे जीवन की कमाई के बदले वो अपनी कमाई से एक सोने का सिक्का खरीदता है, एक भिखारी, और वो सिक्का लेके जाता है एक सेठ के पास, सेठ की डोरबेल बजाता है, क्या है, कहता है साहब मिलने आया हूं, क्या मुझे नहीं मिलना आपसे, वो सेठ मना कर देता है, मिलना ही नहीं मैंने, क्यों मिलूं मैं भिखारी से। तो भिखारी क्या करता है, वो अपना सिक्का जो गिरा देता है, तो सेठ की नजर पड़ती है, अरे बाप रे सोने का सिक्का कहां से लाए गए, कहते साहब मेरा ही है, पूरी जिंदगी की कमाई से ये खरीदा है। कहते अच्छा बोलो क्या काम है, कहते मैं आपसे एक डील करना चाहता हूं। कहते क्या डील करना चाहते हैं, कहते ये सिक्का मैं आपको दे दूंगा। कहते पागल बना रहा है, इसके बदले क्या मांगेगा, कहते कुछ नहीं, कहते अच्छा अंदर आओ। तो कहते हैं हाँ बोलो क्या कह रहे थे। कहते मैं सिक्का आपको देना चाहता हूं, मेरे पूरे जीवन की कमाई के बदले मैंने ये लिया, और इसके बदले जो मैं चाहता हूं वो ये कि आपका जो खजाना है ना, कहते तुम्हें दे दे रहे हैं। कहते नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, उस खजाने को मैं जी भरकर देखना चाहता हूं एक घंटे के लिए। कहता है तो कुछ ले लिया तो? नहीं 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 कुछ लूंगा नहीं, तलाशी करके भेजना, तलाशी करके निकालना, आप भी साथ खड़े रहना मिशन रूपा, एक घंटे के लिए वो खजाना मेरे सामने खोल दो बस। कहता पक्का कुछ लेगा? नहीं नहीं। कहते पहले सिक्का निकाल। कहते सिक्का लेते हैं, खोल देते दरवाजे, ये देख। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, खूब नाचता है, खूब उछलता है, खूब कूदता है, कहता है सब मेरा है, खूब देखता है, खूब उछलता है। और पीछे से वो सेठ हंस रहा होता है, क्यों क्यों हंस रहा होता है? मैं एक घंटे के लिए दिखाया है इसको, एक घंटे के लिए खोला है, ये उसमें इतना उछल कूद रहे हैं, क्या है ये लोग, क्या है इस भिखारी, क्या है पागल है ये। कहता इससे बड़ा मूर्ख नहीं दिखता, तो जीवन भर कमाई करी इसने, सड़कों पे खड़ा हुआ, हर तरह से भीख मांगी, और उसके बाद ये सिक्का खरीद लिया पूरी जीवन की कमाई से, और वो भी किसको दे दिया? मुझे दे दिया। और अब केवल एक घंटे के लिए मैंने खजाना खोला, उसको देख के बड़ा खुश है, मिलना कुछ नहीं है इसको, बस आंखों से देख देख के खुश हो रहा, पागल है। तो भिखारी सुन लेते पागल बोल रहा है मुझे। भिखारी कहते क्या है? कहता है भाई तेरे जैसे पागल नहीं देखा मैंने आज तक। कहता क्यों? कहते देख तो तूने जीवन की कमाई करके सिक्का खरीदा, वो सिक्का मुझे दे दिया, और उसके बदले खाली एक घंटा खाली देखेगा, लेके भी कुछ नहीं जाएगा, तो तेरे से बड़ा तो पागल है, इतना उछल रहा है, इतना नाच रहा है, इतना कूद रहा है। कहते सेठ मैं यही समझाने आया था। कहता मैं एक घंटा इसको देख रहा हूं तो तुम मुझे पागल कह रहे हो? भाई तुम तो पूरा जिंदगी देखते रहते हो, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, कुछ काम नहीं आता, तो मेरे से बड़े पागल तो आप हुए। मैं एक घंटे के लिए देख रहा हूं, आप 60 साल तक देखोगे, और एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकर तो आप भी कुछ नहीं जा सकते साथ। तो जब व्यक्ति अपनी असलियत भूल जाता है तो उसके सारे एफर्ट्स, उसकी सारी क्रियाएं, उसके सारे कर्म उसको बंधन में डाल देते हैं। बंधन का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज। बंधन का मतलब कि उसको उसके द्वारा किए गए कर्मों का जो फल इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो धन के रूप में हो रहा है, चाहे प्रॉपर्टीज के रूप में हो रहा है, चाहे जितने ज्यादा रिलेशन हैं हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे अटैचमेंट है, अपने बच्चों से अटैचमेंट है, अपने माता पिता से अटैचमेंट है, तो जितना समय वो यहां पर है और जितनी ज्यादा उसकी अटैचमेंट इन चीजों से है, वो सारा बंधन का कारण है। और इस बंधन के कारण होगा क्या? जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरण भाव त्वचिते यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। कि व्यक्ति शरीर का त्याग करते समय जिस जिस चेतना में रहता है, जो जो छह रहती है, जो जो भाव उसके हृदय में रहता है, भगवान कह रहे हैं क्योंकि परमात्मा के परमात्मा रूप में उसके साथ ही रहता हूं हमेशा, उसकी इच्छाओं को ही गिनता रहता हूं, नोट करता रहता हूं, तो उसकी इच्छाओं के आधार पर उसको ऐसा शरीर देता हूं ताकि वो सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई हैं। कितनी? 84 लाख प्रकार। अब हमारे शरीर में रहते हुए जिस प्रकार की चेतना या जिस तरह का भाव हम लोग पूरा जीवन तैयार करते हैं, उसके आधार पर भगवान जो हैं 84 लाख में से कोई एक अच्छी सी योनि जिसमें वो इच्छाएं पूरी कर सकें हमें दे देते हैं। पक्षियों की आवाज आ रही है आपको? बोल रहे हैं कुछ? किसी ने इसको पैदा किया होगा, ये भी किसी को पैदा करेगा, इसका भी घर होगा, खाने पीने की सुविधाएं सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठी करेगा, अपने लैंग्वेज में किसी ने किसी को कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, एक्टिविटीज हमारे जैसी हैं, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मैं बस उड़ता जाऊं, जमीन पे मेरे पैर ना लगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो लीजिए ऐसी योनि लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इच्छाएं कीजिए आप, परमात्मा कृष्ण इतने दयालु हैं कि हमारी इच्छाओं को खाली नोट करते रहते हैं, और समय आने पर, परिस्थितियां आने पर, सिचुएशन ठीक ठीक होने पर उनको पूरा करते रहते हैं। केवल कपड़े बदलते हैं, जैसे आप एक दिन आए मंदिर और भगवान को कहा, हे भगवान मेरा ये काम कर दीजिए प्लीज, कि मुझे जो है आज सीधा 10 लाख का फायदा हो जाए। आपने इच्छा की, 2-4-7 दिन में दोबारा आए आप, इन दिनों में कपड़े बदल कर आए और पता चला वो इच्छा पूरी हो भी गई, ठीक है। तो उस समय कपड़े बदले हुए थे आपके, वो वाले कपड़े नहीं थे जिस समय इच्छा की थी, है कि नहीं। उसी तरह कई बार हम जिस योनि में इच्छा करते हैं और जिसमें कर्म करते हैं, तो कर्म का जो फल प्राप्त होता है तो उस समय हो सकता है हमारे कपड़े बदले हो, ठीक है कि नहीं। आप ऑफिस गए, पूरा दिन काम किया, बहुत इच्छाएं थी, आसक्त भी हो गए उससे, लेकिन जब घर में आए, नाइट ड्रेस में है, तब फोन आया, सर वो काम हो गया, फल मिल गया आपको, लेकिन कपड़े चेंज थे। उसी तरह हम लोग भी बहुत सी इच्छाएं करते हैं, बहुत से कर्म करते हैं और हर समय कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति, इनका जो फल है, हो सकता है इस मनुष्य रूपी कपड़े में पूरा ना हो, जब इसको बदल लें 60 साल बाद, 50 साल बाद, हो सकता मनुष्य ही हो लेकिन दूसरे मनुष्य रूप में मिलता हो, ये सब पशु हो तो वहां पर पूरी हो रही हो, पक्षी हो तो उधर पूरी हो रही हो, लेकिन इच्छा पूरी हो रही है। तो ये सारा का सारा नुकसान क्यों हो रहा है हमें, क्या कारण है? जो हम बता रहे हैं कि ये नुकसान होता है, क्या कारण है इसका? हां, क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया। एक जगह हम लेक्चर दे रहे थे तो हमने ना एक पहले या प्रश्न से शुरुआत की, हमने कहा हम लोगों को ना एक बहुत बड़े धोखे में रखा गया है। धोखे में? हां, और ये इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा हमारे साथ गलत बात की गई है, और ये किसने की है मालूम? हमारे अपनों ने एक ऐसी सच्चाई हमसे छुपा के रखी मतलब जिसपे लोग फिल्मों में लोग रोते हैं जब पता चलता है, तो मतलब सच्चाई में भी रोएंगे। मतलब हमारे घर वालों ने हमसे वो बात छुपा के रखी, हमारे दोस्तों में कभी किसी ने नहीं बताया, 12, 15, 18 साल जिस स्कूल या कॉलेज में गए उन्होंने कभी हमको बुलाकर नहीं बताया वो सच्चाई। सबको पता थी, पता नहीं, नहीं पता थी, दोनों कारण हो सकते हैं, पता थी तो भी नहीं बताया, वो भी नहीं जानते थे इसलिए नहीं बताया। और वो सच्चाई क्या थी? वो ये सच्चाई थी कि हम जो हैं वो हम नहीं हैं, हम वो हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। क्या है हम? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। घर में बच्चा होते ही सब लोग बचपन से ही उसको ये भुलाने के लिए कि तू आत्मा नहीं शरीर है कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं बताइए। सबसे पहले उसको नाम देते हैं और उसको ये रियलाइज कराते हैं, तू ये जो नाम तू है ना, ये शरीर ये तू ही है, और फिर उसको एक टारगेट देते हैं कि तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है लक्ष्य जीवन का? पैसे कमाना। और पैसा मिलेगा कैसे? पढ़ाई कर कर, बिजनेस कर कर, ये तेरे जीवन का लक्ष्य। इसके अलावा अगर और भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो उसको फिर विवाह कराते ताकि पूरी मतलब याद ना रहे कभी कुछ भी। फिर उसके घर में संतानें, फिर शादी हुई तो ऐसे परिवार में जहां पर 8 सालियां, 12 जीजा और पता नहीं क्या क्या, मतलब होता है लग कोई परिवार में, अब तो नहीं होता। तो चल अब लग और उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसको क्या दिया था, उसने क्या दिया हमें, हम क्या दें उसको। ऐसे जंजाल में फंस जाता है कि गलती से भी याद नहीं आता। और कभी गलती से अगर ऐसे ऐसे वातावरण में आ गया जहां उनको ये समझाया जा रहा हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम वो हो जो तुम समझ नहीं पा रहे, तो वो पागल बनकर के कहां चला गया, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, कंफ्यूज ही रहेगा। क्योंकि 20 साल बाद, 33 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद मुझे मालूम पड़ा है कि मैं कौन हूं, मेरे असली पिता कौन है, कौन है हमारे असली पिता? कृष्ण है। फिल्मों में 20 साल के बाद किसी को पता चलता है कि तुम्हारा बाप कौन है तो खूब रोता है, वो अपनी मां को खूब डांटता है, तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं। हमको बताने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, भाई ये शरीर के पिता तो कितने हो गए ना, 84 लाख तरह के पिता हैं। हर एक जोनी में कोई ना कोई शरीर देता है हमें। तो जो टेम्परेरी बॉडी है उसके पिता को तो हम जानते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन भैया जिस आत्मा को ये शरीर मिल रहा हो, जो ये आत्मा है, इस आत्मा को जिसने बनाया वो कृष्ण, जो कहते हैं ममे वांश, मेरे अंश हो आप, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं, सर्व योनिश सभी योनियों में, तो उनको तुम जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, और आते भी हैं तो मांगने के लिए। तो आज के श्लोक में यही बताया जा रहा है कि जब तक आत्मा, मतलब मैं मतलब जो अंदर हूं, जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, सटल बॉडी के 3 एलिमेंट्स हैं, मन बुद्धि और झूठा अहंकार, ये जो 3 चीजें हैं जो सटल हैं, बहुत दिखाई नहीं देती हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, ये 3ों चीजों का बना हुआ शरीर पहला हमारी आत्मा के ऊपर कवरिंग है, जो जहां से अज्ञान, इच्छाएं और ज्ञान, ये 3ों चीजें जहां से जनरेट होती है। फिर कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है तब तक, मतलब जब तक ये 3ों चीजें हमारे ऊपर है, मन बुद्धि और अहंकार का शरीर जो पहला शरीर है, जब तक हमारी आत्मा के ऊपर इसकी कवरिंग है, तब तक इस श्लोक में लिख रहे हैं हिरण्यकश्यपु जी बता रहे हैं कि तब तक व्यक्ति सकाम कर्मों में बंधा रहता है। इच्छाएं करेगा तो कर्म भी करेगा, और कर्म करेगा तो उसके कर्मों के फल से भी आसक्त रहेगा। अब देखिए हम हर कर्म, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि भक्तों को चाहिए कि वो इतने बढ़िया ढंग से इस भगवत गीता को समझें कि सब छोड़ छाड़ के ना आ जाएं, मतलब ऐसा कुछ ना करें। हाँ ये जरूर करें कि गृहस्थी में रहकर इस प्रकार कर्म करें कि कर्म के फलों से आसक्त ना हो, और उन लोगों को जिनको कि कर्मों से और कर्मों के फलों से आसक्ति है, जब वो आपकी तरफ देखेंगे तो उनको क्या ज्ञान मिलेगा कि ओहो ऐसे भी किया जाता है कर्म, वो भी कर्म करता है, हम भी कर्म करते हैं, उसका भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ तो भी वो खुश है, तो भी वो संभव है, और जब मुझे नुकसान हुआ तो मैं कुर्सी पर चढ़कर पंखे की ओर भाग रहा हूं। है कि नहीं, समझ पा रहे? अटैचमेंट का नुकसान। एक भक्त जो है उसको भी दुखी हो, दो भी दुखी हो सकता है, उसको भी नुकसान होता है, लेकिन वो हमेशा संभाव रहता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं तो यहां बड़ा टेम्परेरी हूं, सदमा लग जाएगा, फायदा नहीं अटैचमेंट होने का। ठीक है कि नहीं? यहां पर अटैचमेंट रखने का फायदा नहीं है, नहीं तो आप वो देखिएगा सदमा फिल्म। समझ पा रही बात को? कि यहां पर अगर ज्यादा अटैचमेंट रख ली तो सदमा लगना ही लगना है, और सदमे में होता क्या है, या तो बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, या हम अपने आपा खो देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे लक्षण है सदमे के, और हम सबको सदमा लगा हुआ है, रोज लगता है, दिन में 5 बार 10 बार 15 बार लगता है कि नहीं लगता? गुस्सा आता है कि नहीं आता? फ्रस्ट्रेशन होती है ना पूरे दिन में, कई बार कितनी बार होती है? बहुत बार होती है, क्योंकि इच्छा हुई। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु पजायते, संगा संजायते काम काम क्रोध अभिजायते। कह रहे हैं कि कैसे होता है ये सब, कैसे होता है? जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, 5 सेंसेस है ना हमारे, ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक जीव और त्वचा, इनसे ज्ञान मिलता है। आंख से रूप देखते हैं हम, कौन अपना कौन पराया है ना, क्या रंग है। कान से हम शब्द सुनते हैं, शब्द ध्वनि, तो कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है। नाक से हम गंध लेते हैं, क्या सुगंध है क्या दुर्गंध है, ज्ञान मिलता है ना। जिह्वा से टेस्ट पता चलता है, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा। और स्पर्श इंद्री से कोमल हार्ड कंटीला खुरदरा, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब ये 5 सेंसेस अपने अपने सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ देखती है या उसके संसर्ग में आती है, तो मन जो है उस पर सोचना शुरू कर देता है। ठीक है? और सोचते 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 उन विचारों से इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है कि व्यक्ति कर्म करने की ओर बाध्य हो जाता है। उसको यह लगता है कि जब तक मैं ये ना कर लूं या ये चीज मुझे ना मिल जाए, तब तक मेरा जीवन परेशानी रहेगा, दुखी रहूंगा। तो फिर वो बहुत प्रयास करता है उन सब चीजों को लेने का, और जब वो चीजें पूरी हो जाती हैं तो बहुत खुश होता है। ठीक है? खुश होता है का मतलब वो बड़ा ऊपर हो जाता है। और जब कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसका मॉरल एकदम नीचे आ जाता है, एकदम वो डाउन फील करता है। तो सुख उसको ऊपर ले जाता है, दुख उसको नीचे ले जाता है। हम कह रहे हैं कि जमीन पे रहो, सुख आए तो भी जमीन पर, दुख आए तो भी जमीन पर। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति पे रहता है, जिसे संभव की स्थिति कहते हैं, और भगवत गीता के 12वें अध्याय में लगभग 13 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक भगवान यही बता रहे हैं कि कौन सा भक्त मुझे अधिक प्रिय है, वो जो संभव रहता है, वो जो किसी को दुख नहीं देता, वो जो किसी के डिस्टर्ब करने से भी परेशान नहीं होता, जो हानि लाभ में भी सम रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे प्रिय हैं, और अगर कोई ऐसा बनना भी चाहता है तो कितना फायदा है देखिए। तो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो बहुत खुश है, बहुत आनंद की स्थिति में है, और जो ऐसी स्थिति में नहीं है, जो सेल्फ रियलाइज नहीं है, जो प्रयास नहीं कर रही है सब आत्मा का ज्ञान का, तो उनको हर छोटा सुख ऊंचा ले जाएगा और हर छोटा दुख परेशान करेगा, डिप्रेशन बनाएगा। इसलिए जो ये आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर जो मन बुद्धि अहंकार का जो पहला शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसी से हम लोग सब कुछ भोगते हैं, और इसी के द्वारा प्रेरित होते हैं कर्म करने के लिए, फिर कर्म इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं या कर्मों में लगाते हैं, जिन कर्मों को करते हैं उन कर्मों से उसके फलों से अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूं इससे क्या मिलेगा, और जो अभी मिला नहीं है जो सोच रहे कि मिलेगा, वो जो मिलेगा तो उसका मैं कैसे कैसे इस्तेमाल करूंगा, और उसको इस्तेमाल करते हुए मैं कैसे फिर लोग मुझे कैसे देखेंगे कि मेरे पास ये है फिर वो है, अभी मिला नहीं है, अभी तो कर्म कर रहा है। कर्म करते कर पहले कर्म करने से पहले आसक्त था उस विचारों से, कर्म करते हुए उस विचारों से और आसक्त हुआ, और अब उनके ख्यालों में ख्वाबों में और ज्यादा वो आसक्त हो गया, और जब कर्म का फल वैसा नहीं मिलेगा तब क्या होगा, काम इच्छाओं के बाद क्रोध भी जाते, इच्छाएं जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, तो कितना मुश्किल हो जाता है जीवन लोगों का, कितना दुखी रहते हैं लोग इस वजह से, क्योंकि ज्ञान नहीं है, और ये ज्ञान नहीं है आत्मा और शरीर का, इसीलिए पूरे विश्व में झगड़े हैं, कलह हैं, कलेश है। एक परिवार के अंदर अगर चार लोग भी रह रहे हैं और उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो भी दुखी परेशान और झगड़ेंगे। एक यूनाइटेड फैमिली है 20 लोग रह रहे हैं, उनमें भी अगर ये ज्ञान नहीं है तो हो सकता है कुछ समय तक साथ रहें लेकिन उसके बाद झगड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि हम कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है। एक जाति के भी अगर लोग हैं तो उनके अंदर भी झगड़ा होगा, एक ही कास्ट के हैं तो भी परेशानी होगी। एक देश के अंदर भी लोग हैं तो भी आपसी में झगड़े, परेशानियां, लड़ाई, क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन है। इस तरह एक धर्म के भी अगर लोग हैं तो भी लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम कि हम कौन हैं। इसलिए पूरे विश्व भर में जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी धर्म लोग चला रहे हैं, उन धर्मों में उन धर्म गुरुओं ने किसी को भी शरीर और आत्मा का भेद नहीं बताया है, ना वो खुद जानते हैं शायद और ना बताया है, इसलिए सब लोग पर्टिकुलर एक ही धर्म से आसक्त होकर उसी के लाभ और हानि को देखते हुए, मान और सम्मान को देखते हुए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दुखी रहते हैं, या खुद मरते हैं या दूसरों को मारते हैं केवल इस अज्ञानता की वजह से। इसलिए ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं और ना ही ईसाई, हम क्या हैं? एक आत्मा है जिसकी वृत्ति है सेवा करना, और जिसकी कास्ट है मतलब दास, हम भगवान के दास, और उन भगवान की सेवा करना, और जो लोग उनको भगवान मानते हैं, जो अपने को दास मानते हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करना, ये जीवन का लक्ष्य है। इस बीच जीवन को चलाने के लिए दो वक्त की रोटी, तन पे कुछ कपड़े, रहने के लिए एक छत, कितने दिन तक? जब तक कि आखिरी सांस ना निकल जाए, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल। नहीं, मुझे तो अभी बहुत कमाना है क्योंकि मुझे आने वाली कई जनरेशन को पालना है। हम धन इकट्ठा कर रहे हैं उस जीवात्मा के लिए जो भगवान से हर समय धन मांग रहा है, बहुत पुण्य कर्म कर रहा है, बहुत इच्छा है उसकी, तो भगवान कहेंगे अच्छा तेरी इच्छा है, इधर ये धन इकट्ठा कर रहा है, चल तेरे को इसके घर में इसका बेटा बना के भेज देता, ठीक है क्या? तो कर्म का कर्मणा गहन गति, कर्म की गति बहुत गहन है। आपने किसी की पिटाई कर दी, खूब मारा, पावर आपके पास, नो प्रॉब्लम, आपकी पिटाई करने के लिए, आपको दुख देने के लिए, मानसिक और शारीरिक, मैं आपके घर में एक ऐसी संतान भेज देता हूं जो आपको उतने ही दुख देगी, उतने ही कष्ट देगी जितना आपने उसकी पिटाई करते हुए किया था। कर्मों का जो फल है वो सबको मिलता जरूर है, कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए बताया जाता है जिस प्रकार कर्मों को या कर्मों के फलों को ना मल से तुलना की गई है, मल मतलब स्टूल, लैट्रिन, सूखा हो चाहे गीला हो दोनों गंदे हैं। गीला मल सुख के समान है और सूखा मल दुख के समान है। तो जब आप ज्यादा दुखी हो तो समझ लेना आपके पास क्या पड़ा है, सूखा मल पड़ा है। और जब बहुत खुश हो रहे हो किसी चीज की वजह से तो सोच लेना कि हमने जो है आलिंगन किया है गीले मल का। तो इसलिए क्या है बेहतर स्थिति? बेहतर स्थिति है कि व्यक्ति को संभाव रहना चाहिए। खुश रहने से मना नहीं कर रहे हैं। भक्त लोग खुश और दुख ये सब नहीं होते, वो आनंद में रहते हैं हमेशा, दुखी नहीं होते वो लोग। तो उस स्तर पर पहुंचना है। इसलिए हिरण्यकश्यपु यहां पर अपने परिवार वालों को सांत्वना देते हुए उनको शरीर से अलग कर रहे हैं। अगर व्यक्ति को मालूम पड़ गया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं तो क्या होगा? फिर शरीर के दुख, शरीर की समस्याएं, शरीर के कष्ट, शरीर के संबंधी जाए चाहे आए, नो प्रॉब्लम, एक गया और आएगा, सारे जाए नो प्रॉब्लम, किसी और परिवार में जन्म लेंगे। अर्जुन कहता मैं किसी को नहीं मारूंगा, सब मेरे अपने, भगवान ने कहे सब मार चुका हूं मैं, निमित मात्र भव सब, अरे क्रेडिट लो बस। तो उसी तरह हम लोगों को भी कर्म करना है, ड्यूटीज पूरी करनी है। उस बैंकर की तरह जो बैंक में कैश गिनता है और कैश गिनते गिनते अचानक कोई व्यक्ति कहता सर मैं आज 1 करोड़ रुपए लाया हूं जमा कराने के लिए, तो बैंकर उसी टाइम उठता है और 5,000 की मिठाइयां बांट देता है कि आज जो है मेरे बैंक में क्या हुआ है 1 करोड़। अरे भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पैसे किसी के, जमा किसी के पास है, मिठाइयां तू बांट रहे हैं, देखा किसको बांटते हुए, चाहे 1 आए चाहे 10 आए, मोहराज ठीक है लाइन में संभाव है, वो तो कोई लेना देना नहीं, सर सारा निकालना, निकाल लो तुम्हारा पैसा मुझे क्या दिक्कत है, ले जाओ तो नो प्रॉब्लम, दे जाओ तो नो प्रॉब्लम। तो भक्तों को भी ऐसे होना चाहिए, कैसे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, बोलो हरे कृष्ण। तो जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति में आइए और आना चाहिए मतलब। और जो दूसरे लोग बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, डिस्टर्ब है, सबको सदमा लगा है, जो पागलों की तरह घूम रहे हैं, उनको बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यहां पर हिरण्यकश्यपु बड़ा तेज आदमी है, वैसे तो ये भगवान के पार्षद हैं, लेकिन यहां पर खाली शरीर और आत्मा का ही बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि आत्मा अंश किसका है। वो बता दिया तो फिर उनकी पूजा करनी पड़ेगी उनको, है ना, और अभी तो काम करना है, भगवान का अवतार करवाना है उनको, तो इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, इतना समझो भाई अपने को दुख से अलग कर लो बस, जिसके लिए रो रहे हो पता नहीं कहां है, फिर शरीर मिल गया तुम यहां रो रहे हो। फिर एग्जाम्पल भी दे रहे कई तरह के हिरण्यकश्यपु। तो आपसे प्रार्थना है कि आप सब लोग इन भागवतम के संदेशों का सही ढंग से सुनने के बाद और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसमें देखिए कोई नुकसान नहीं है, अगर आपने ये सब समझ लिया, ये ज्ञान अगर आपको हो गया, तो उसमें फायदा किसका है? हमारे ही फायदा है। आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, आपका हृदय कभी ऐसे ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसा तो होगा मतलब वो डर वाला हृदय ऐसा नहीं होगा, मतलब आपको लगे कि बंद होगी सांस। आपको कोई राग द्वेष, कोई चिंता, कोई इनसिक्योरिटी, कोई लॉस होने का डर, कोई ये हो, कुछ फायदा नहीं इसका, आप बहुत सुखी हो जाएंगे केवल आत्मा के ज्ञान से। फायदा है कि नहीं है? और अगर कोई दुखी होना चाहता है, परेशान होना चाहता है, डिप्रेशन में जाना चाहता है और खूब मतलब आंसू निकालना चाहता है, पागलों की तरह चिल्लाना चाहता है, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, अटैच हो शरीर से, बस मानो कि मैं शरीर हूं, ये मेरा पैसा है, ये मेरे धन, ये मेरे घर वाले, ये मेरा पैसा, ये मेरा बिजनेस, खबरदार अगर इसमें कुछ हुआ तो हो गया, खबरदार अगर कोई मेरे पति को या मेरे पिता को या मेरे बच्चे को कोई लेके जाए, ना सबने जाना है, पहले तैयार रहो ना, आखिरी विकेट है, एक बॉल पर 50 स्कोर चाहिए, मालूम है हारना है, है ना, तो मालूम ही है हमने। तो उसी तरह अगर मालूम है कि हम लोगों को कि मनुष्य हैं और दुख, फिर तो दुख ही है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर शरीर मान लिया तो फिर दुख ही दुख है फिर, और अगर आत्मा मान लिया, भगवान का दास मान लिया, तो क्या है? आनंद ही आनंद। बोली हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा हो ना तो अलग से आके पूछिए। हरे कृष्ण।